लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि ख्रीस्त के सुसमाचार के प्रति निष्ठावान और सदैव धर्माधीक्षित धर्म सभा की संयुक्ति में जीवन यापन कर कलीसिया एकात्मता, भ्रातृत्व और आतिथेय का समुदाय बने। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है बुधवारीय आम दर्शन समारोह में संत पापा फ्रांसिस की धर्म शिक्षा माला, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओं, संत पापा फ्रांसिस ने अपने बुधवारीय आम दर्शन समारोह के अवसर पर वेटिकन संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में जमा हुए सभी विश्वासियों और तीर्थयात्रियों को संबोधित करते हुए कहा,
cari fratelli e sorelle, buongiorno. Continuiamo a trattare il tema del discernimento.
प्रिय भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात। आत्म परीक्षण की विषय वस्तु पर अपनी चर्चा हम जारी रखते हैं। पिछली बार हमने प्रार्थना पर चिंतन किया। यह ईश्वर के संग हमारी घनिष्ठता और उनमें हमारा विश्वास है, जो आत्म परीक्षण हेतु एक अति महत्वपूर्ण तत्व है। प्रार्थना बच्चों के मनोभाव, खुले हृदय से ईश्वर के पास आना है। आज हम इसके पूरक व्यक्तिगत ज्ञान पर जिक्र करेंगे, जो एक अच्छे आत्म परीक्षण हेतु जरूरी है। संत पापा ने कहा कि अपने आप को जानना अपने में सहज नहीं है। यह हमारी मानवीय क्षमताओं, स्मरण शक्ति, बुद्धि, इच्छा और मनोवेगों का उपयोग करना है। अच्छा निर्णय कैसे लेना है, हम बहुत बार नहीं जानते, क्योंकि हम अपने को अच्छी तरह नहीं जानते हैं। अतः हम नहीं जानते कि हम सही अर्थ में क्या चाहते हैं। आध्यात्मिक शंकाओं और बुलाहटीय संकटों के दौर के पीछे हम बहुत बार धर्म संघी जीवन, मानवीय भावनात्मक आयामों के बीच अपर्याप्त संवाद को पाते हैं। आध्यात्मिकता पर अपने विचारों को लिखने वाले एक लेखक ने इस बात पर गौर किया कि आत्म परीक्षण के संबंध में कितनी सारी समस्याएं हैं, जिन्हें हमें पहचानने और उनके बारे में खोज करने की जरूरत है। वे लिखते हैं, आत्म परीक्षण के संबंध में सबसे बड़ी बाधा जिसके बारे में मैं आश्वस्त हूँ, वह ईश्वर का अमूर्त रूप नहीं, बल्कि यह है कि हम स्वयं अपने बारे में पर्याप्त नहीं जानते और ना ही हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि हम सही में क्या हैं। हम में से हर कोई अपने में मुखौटा से ढका रहता है, न केवल दूसरों के सामने, बल्कि तब भी जब हम अपने को दर्पण में देखते हैं। हमारे जीवन में ईश्वरीय उपस्थिति की अज्ञानता, हमारे स्वयं की अज्ञानता, अपने व्यक्तित्व के लक्षणों और अपनी गहरी इच्छाओं की अज्ञानता के साथ साथ चलती है। संत पापा फ्रांसिस ने कहा,
Conoscere se stessi non è difficile, ma è faticoso.
अपने को जानना कठिन नहीं है, लेकिन यह मेहनत भरा कार्य है। यह धैर्य में अपने हृदय के अंतःस्थल में उतरना है, अपने कार्य करने के तरीके से रूबरू होना है, अपने अंदर व्याप्त अनुभवों की थाह लेना है, जो निरंतर हमारे अंदर होते हैं, बहुधा अवचेतना में। यह अपने अंदर व्याप्त भावनाओं और आध्यात्मिक योग्यताओं के बीच भी अंतर स्थापित करना है। मैं अनुभव करता हूँ, अपने में मैं सुनिश्चित हूँ से भिन्न है, मुझे ऐसा लगता है, अपने में मुझे चाहिए के समान नहीं है। इस भांति हम अपने में यह जानते हैं कि हमारे विचार, जिन्हें हम धारण करते, और सच्चाई कभी कभी अपने में विकृत हैं। यह देख पाना अपने में एक कृपा है। वास्तव में कई बार ऐसा होता है कि पिछले अनुभवों के आधार पर वास्तविकता के बारे में हमारी गलत धारणाएं हमें बहुत अधिक प्रभावित करती हैं। यह हमारी स्वतंत्रता को सीमित कर देती है, जहां हम जीवन की सच्चाई को लेकर अछूते रह जाते हैं। संत पापा ने कहा कि हम सूचना तकनीकी के युग में रहते हैं। हम यह जानते हैं कि किसी प्रोग्राम में प्रवेश करने हेतु पासवर्ड कितना महत्वपूर्ण है, जहां हम अपने अति व्यक्तिगत और मूल्यवान बातों को संचित कर रखते हैं। आध्यात्मिक जीवन के भी पासवर्ड्स हैं, कुछ शब्द जो हमारे हृदय का स्पर्श करते हैं, क्योंकि वे हमारे लिए उन चीजों की ओर इंगित कराते हैं जो अति संवेदनशील हैं। परीक्षक अर्थात शैतान उन विशेष शब्दों को अच्छी तरह जानता है। हम भी उन्हें अच्छी तरह जानते हैं, जिससे हम उन स्थानों में ना पड़े जहां हम नहीं होना चाहते हैं। यह जरूरी नहीं कि परीक्षक हमारे लिए आवश्यक रूप से बुरी चीजों को लाए, लेकिन वह बहुत बार हमारे लिए चीजों को अस्त व्यस्त कर देता है, उन्हें जरूरत से ज्यादा अत्यधिक महत्वपूर्ण रूप में प्रस्तुत करता है। इस भांति वह हमें उन आकर्षक चीजों से सम्मोहित कर देता जो हममें हलचल उत्पन्न कर देती हैं। वे चीजें सुंदर हैं, लेकिन हमें भ्रमित करती, वे हमारे लिए उन चीजों को प्रदान नहीं करती जिनकी वे प्रतिज्ञा करती हैं। इस तरह वे हमें अपने में खालीपन और उदासी में छोड़ देती हैं। खालीपन और उदासी की अनुभूति हमारे लिए एक निशानी है जो हमें कहती है कि हमने सही मार्ग का चुनाव नहीं किया है। वे हमारे लिए हमारी डिग्री, कैरियर, आपसी संबंध, वे सारी चीजें होती जो अपने में प्रशंसनीय हैं, लेकिन इन बातों के लिए अगर हम स्वतंत्र नहीं हैं, तो हम अवास्तविक उम्मीदों को पोषित करने की जोखिम में पड़ जाते हैं। हम अपनी पहचान स्थापित करने में लग जाते हैं। इस नासमझी के कारण बहुधा हम अपने को बड़े दुख में पाते हैं, क्योंकि उनमें से कोई भी चीज हमारे आत्म सम्मान की गारंटी नहीं देती है। संत पापा फ्रांसिस ने कहा,
Per questo, cari fratelli e sorelle, è importante conoscerci, conoscere le password del nostro cuore.
यही कारण है कि हम में से हर किसी को अपने हृदय के पासवर्ड जानना जरूरी है। हम किन चीजों के प्रति अति संवेदनशील हैं, जिससे हम उनसे अपने को बचा सकें, जो विश्वासपूर्ण शब्दों के द्वारा हमें दिग्भ्रमित करते हैं। इसके साथ ही हम अपने में यह जानें कि हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है। इस भांति हम अपने वर्तमान स्थिति की चमक छिछली बातों से दूर रह सकेंगे। संत पापा ने दूरदर्शन के विज्ञापनों के प्रभाव की ओर ध्यान आकर्षित कराया, जो हमारे हृदय का स्पर्श करती और हम अपनी स्वतंत्रता को खो देते हैं। हम सावधान रहें, क्या मैं स्वतंत्र हूँ या अपने को क्षणिक मनोभावों में या उत्तेजना में बहता हुआ पाता हूँ। संत पापा ने अंतःकरण की जांच हेतु लोगों का ध्यान आकर्षित कराते हुए कहा कि हम दिन में सामान्य रूप से इस बात की जाँच करें कि इस दिन मेरे हृदय में क्या हो रहा है। आज बहुत सारी चीजें हुई, किन बातों ने मेरे हृदय का स्पर्श किया। अंतःकरण की जांच अपने में एक अच्छी आदत है, जहां हम अपने दिनचर्या की बातों को मुड़कर देखते हैं। हम इस बात को जानते और सीखते हैं कि हमने किन बातों को अधिक महत्व दिया, हमने किस चीज की खोज की और क्यों, हमने अंततः क्या पाया। इससे भी बढ़कर ऐसा करने के द्वारा हम यह सीखते हैं कि हमारे हृदय को कौन सी बातें संतुष्टि प्रदान करती हैं, क्योंकि केवल ईश्वर हमें अपनी योग्यता की मुहर से अंकित करते हैं। वे अपने क्रूस से हमें इस बात को बतलाते हैं कि वे हमारे लिए मरे, जिससे वे हमें यह बता सकें कि हम उनकी आँखों में कितने मूल्यवान हैं। ऐसी कोई भी बाधा या असफलता नहीं जो हमें उनके करुणामय आलिंगन से रोक सकती है। संत पापा ने पुनः अंतःकरण की जांच के बारे में कहा कि यह हमारी बहुत सहायता करती है, क्योंकि इसके द्वारा हम अपने हृदय की थाह लेते हैं। यह कोई रास्ता नहीं जहां हर चीज पार हो जाती और हमें पता नहीं चलता, ऐसा ना हो। हम देखें कि आज हमारे साथ क्या हुआ, मैंने कैसे प्रतिक्रिया की, किन बातों से मैं उदास हुआ, किन बातों से मुझे खुशी हुई, क्या बुरा हुआ और क्या मैंने किसी को चोट पहुंचाया। आप अनुभवों प्रेरणाओं की थाह लें। संत पापा ने कहा कि प्रार्थना और आत्मज्ञान हमें स्वतंत्रता में बढ़ने हेतु मदद करते हैं। ये ख्रिस्तीय जीवन के आधारभूत तत्व हैं। ये हमें अपने मूल्य की खोज करने हेतु मूल्यवान कारक हैं। इतना कहने के बाद संत पापा फ्रांसिस ने अपनी धर्म शिक्षा माला समाप्त की और सभों के संग हे पिता हमारे प्रार्थना का पाठ करते हुए सभों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।
Aiutorium nostrum in nomine Domini. Benedica vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने सलाह दी है कि हम ईश्वर की करुणा पर भरोसा करें जो हृदय बदल सकते हैं। यूक्रेन में युद्ध की बढ़ती स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए और मन परिवर्तन को युद्ध विराम का आवश्यक उपाय बतलाते हुए संत पापा ने करुणा की संरक्षिका संत फौस्तीना क्वालास्का की मध्यस्थता से मुक्ति हेतु प्रार्थना करने का प्रोत्साहन दिया। संत पापा ने 5 अक्टूबर को संत फौस्तीना क्वालास्का के पर्व दिवस के अवसर पर एक ट्वीट में लिखा, आज हम संत फौस्तीना क्वालास्का की याद करते हैं। उनके द्वारा ईश्वर ने दुनिया को उनकी करुणा में मुक्ति की खोज करना सिखाया। आइए हम इस समय विशेष रूप से यूक्रेन में युद्ध की याद करें। आइए हम ईश्वर की दया पर भरोसा करें जो हृदय बदल सकते हैं। आज के दूसरे ट्वीट संदेश में संत पापा ने अपने दिल में प्रवेश कर उससे अच्छी तरह जानने की सलाह दी। जिस तरह हम चाबी से दरवाजा खोल सकते हैं और पासवर्ड से ईमेल, उसी तरह हमारे दिल में प्रवेश करने के लिए एक पासवर्ड है जिससे हमें जानना जरूरी है। संत पापा ने ट्वीट में लिखा, अपने दिल के पासवर्ड को जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण है जिसके लिए हम खूब संवेदनशील होते हैं। न केवल उन लोगों से अपनी रक्षा करने हेतु जो हमारे साथ हेर फेर करने के लिए मोहक शब्दों के साथ प्रस्तुत होते, बल्कि यह जानने के लिए भी कि क्या सचमुच हमारे लिए महत्वपूर्ण है। बुधवार आम दर्शन समारोह के दौरान अपनी धर्म शिक्षा माला के अंत में संत पापा फ्रांसिस ने पुनः पूर्वी यूरोप में युद्ध की त्रासदी की याद की। संत पापा ने यूक्रेन के लिए प्रार्थना की याद दिलाते हुए कहा, आइए हम पीड़ित यूक्रेन के लिए प्रार्थना करना ना भूलें। प्रभु से हमेशा शांति की कृपा के लिए प्रार्थना करें। पोलिश भाषी तीर्थयात्रियों को संबोधित करने के तुरंत बाद संत पापा ने संत फौस्तीना क्वालास्का की याद की जिनका पर्व आज मनाया जाता है। संत पापा ने निमंत्रण दिया कि हम युद्ध को ना भूलें। उन्होंने कहा, संत के द्वारा ईश्वर ने दुनिया को दिखलाया कि उनकी करुणा में हम मुक्ति की खोज करें। आज हम यूक्रेन में युद्ध की याद करते हुए विशेष रूप से इस बात की याद करें। कार्डिनल पारोलिन, सिस्टर्स मेरेली और पर्यावरण के समर्थकों ने 4 अक्टूबर को संत फ्रांसिस असीसी के पर्व दिवस पर पोप फ्रांसिस की विशेषता को दर्शाने वाली फिल्म द लेटर के ग्लोबल प्रीमियम में भाग लिया। डॉक्यूमेंट्री को आम घर की देखभाल एवं सुरक्षा हेतु समर्पित किया गया है। द लेटर फिल्म का विश्व स्तर पर पहला प्रदर्शन पोप फ्रांसिस की उपस्थिति में मंगलवार को वैटिकन के न्यू सिनेट हॉल में किया गया, जिसमें कार्डिनल पियत्रो परोलिन, कार्डिनल माइकल चर्नी, वैज्ञानिक समुदाय, राजदूत और प्रेस के साथ साथ कलीसिया के धर्म गुरुओं ने भाग लिया। डॉक्यूमेंट्री फिल्म द लेटर हमारी धरती के लिए एक संदेश की स्क्रीनिंग 4 अक्टूबर को सेंट फ्रांसिस असीसी के पर्व दिवस पर किया गया। इसका उत्पादन ऑस्कर विजेता ऑफ द फेंस प्रोडक्शन ने किया है तथा इसे यूट्यूब ओरिजिनल्स ने प्रस्तुत किया है। इसी दिन परमधम पीठ ने जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते में आधिकारिक रूप से प्रवेश किया। विशेषज्ञों का अनुमान है कि 2050 तक करीब 1.2 बिलियन लोग जलवायु परिवर्तन के कारण वैश्विक स्तर पर विस्थापित होंगे। वैटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पियत्रो पारोलिन ने पेरिस समझौते के कार्यान्वयन में तेजी लाने के तरीके पर चर्चा करने हेतु राजदूतों और अन्य नेताओं के साथ 4 अक्टूबर को ही दिन में एक कार्यक्रम की मेजबानी की। उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कार्डिनल पारोलिन ने सेंट फ्रांसिस असीसी के पर्व के अनुकूल इन दोनों कार्यक्रमों पर चर्चा की। इस परिस्थिति के लिए प्रार्थना का आह्वान करते हुए तथा इसे सेंट फ्रांसिस के सपोर्ट करते हुए कार्डिनल ने एक अपील जारी की कि पर्यावरण की रक्षा ठोस कार्रवाई, वार्ता एवं एक साथ काम करते हुए किया जाए। अर्थशास्त्री एवं वैटिकन के समग्र मानव विकास को प्रोत्साहन देने वाले विभाग की सचिव सिस्टर अलेसांद्रा स्मेरेली ने सभा को संबोधित करते हुए सेंट पापा फ्रांसिस के विश्व पत्र लाउदातो सी में ग्रह की देखभाल हेतु प्रार्थना की याद दिलाई। लाउदातो सी आंदोलन के कार्यकारी निदेशक और संचार विभाग के सलाहकार टॉमस इंसुआ ने एकत्रित लोगों का स्वागत किया। यह देखते हुए कि घटना दो पात्रों को याद करने के लिए है, पहला फिल्म लेकिन पोप के विश्व पत्र के लिए भी, उन्होंने जोर देकर कहा कि पारिस्थितिक संकट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना हमेशा जरूरी है क्योंकि यह दुनिया भर में अधिक जलवायु तबाही को भड़का रहा है। डॉक्यूमेंट्री के मुख्य पात्रों में से एक अरोना कांड्रे ने लोगों को फ्रेंच में संबोधित किया कि जागरूकता बढ़ाना क्यों इतना महत्वपूर्ण है। युवावस्था में ही अरोना को मरुस्थलीकरण के कारण सेनेगल से अपना घर छोड़ना पड़ा था। वे एक तटीय शहर गए जहां समुद्र की सतह बढ़ रही है। निराश होने के बदले अरोना दृढ़ बने रहे। वर्तमान में वे एक विश्वविद्यालय के छात्र हैं और अपने देश में सतत विकास हेतु आने वाली पीढ़ी का नेतृत्व करने के लिए एक नया एनजीओ विकसित कर रहे हैं। अरोना ने सुझाव दिया कि वे उन लाखों लोगों में से एक हैं जिनके पास जलवायु संकट का प्रत्यक्ष अनुभव है और इस बारे में जानकारी रखते हैं कि इसे हल करने के लिए क्या करना होगा। उन्होंने कहा, जलवायु परिवर्तन हाल के दशक में मानव द्वारा सामना की जा रही सबसे बड़ी चुनौती है। मैं इसके बारे कुछ जानता हूं क्योंकि मैं एक जलवायु शरणार्थी हूं। मैंने ग्लोबल वार्मिंग के कारण अपने क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में शरण ली। आज हमें इस बात पर सहमत होना चाहिए कि आने वाली पीढ़ी को उन गलतियों का भुगतान नहीं करना चाहिए। उन्होंने बतलाया कि किस तरह स्कूल पानी में बह गया और कितने लड़कों के सोने के लिए जगह ही नहीं थी और वे खड़े होकर सोने के लिए मजबूर थे। अमाजोन पर सेंट पापा फ्रांसिस के सीनेट के मद्देनजर फिल्म में क्षेत्र की चीफ कासिम दादा को दिखाया गया है जिन्होंने इस क्षेत्र के शोषण और तबाही की ओर ध्यान खींचा है और दुनिया को बतलाया है कि आदिवासी किस तरह लगभग 80% जैव विविधता की रक्षा करते हैं। संयुक्त राष्ट्र के लिए परमधम पीठ के स्थायी पर्यवेक्षक महाधर्माध्यक्ष फोर्तुनातुस ने जेनेवा में 51वें सत्र को संबोधित करते हुए आदिवासी लोगों के अधिकार का सम्मान करने का प्रोत्साहन दिया तथा परम्परागत ज्ञान एवं क्षमता को संचय रखने के महत्व की रक्षा करने में आदिवासी महिलाओं की भूमिका की सराहना की। जेनेवा में मानव अधिकार समिति के 51वें सत्र को संबोधित करते हुए महाधर्माध्यक्ष फोर्तुनातुस ने एकजुटता में वैश्वीकरण को बढ़ावा देने के प्रयास का आह्वान किया जो विविध संस्कृतियों का सम्मान करता और सभी की अंतर्निहित गरिमा की मान्यता सुनिश्चित करता है। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।